ओम शांति। अभी हम फिफ्थ बुक एक्सलेंस इन लाइफ इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे इस किताब में बहुत सारे टॉपिक्स जो हम जनरली कराते आए हैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में या ऑफिसेस में, और पीजी डिप्लोमा और एमएससी में भी ये टॉपिक्स कवर अप किया हुआ है, जनरल टॉपिक्स है। वैसे इस रेसिपी में हम अलग अलग देखा, मेडिटेशन के बारे में भी है, राजयोग के बारे में एक बुक है, एनवायरमेंट के बारे में एक बुक है, और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में एक बुक था। ये जो फिफ्थ बुक है वो जनरल टॉपिक्स है। इस बुक में 7 टॉपिक्स है। इसमें सबसे पहले है स्ट्रेस फ्री लिविंग, सेकेंड है एंगर फ्री लिविंग, कर्म योग, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, मैनेजिंग थॉट्स एंड इमोशंस, इमोशनल मैच्योरिटी एंड रिसेंटमेंट मैनेजमेंट। ये सभी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, पीजी डिप्लोमा जिन्होंने किया है या फिर एमएससी किए हैं, और एमबीए में भी ये टॉपिक्स हैं कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ हम ब्रशअप करते जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी हम सभी इन टॉपिक्स के बारे में पता ही है। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस फ्री लिविंग। स्ट्रेस क्यों होता है या स्ट्रेस की परिभाषा क्या है, हम सभी जानते हैं। स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल देर इज समथिंग वी नीड टू चेंज। जब भी तनाव होता है तो इसका ये मैसेज हमें मिलता है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है। जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते थे तो कोई भी मेटल का टेंशन हमें मेजर करना होता था तो वो एक इक्वेशन हम यूज किया करते थे, प्रेशर बाय रेजिलियंस पावर। ऐसे ही स्ट्रेस को हम यही फॉर्मूला लागू करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां हैं, हम इस परिस्थितियां कह सकते हैं या चैलेंजेस कह सकते हैं, चैलेंजेस डिवाइडेड बाय इनर पावर। स्ट्रेस को अगर कम करना है 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं इस इक्वेशन के अनुसार? आइदर चैलेंजेस को कम कर सकते हैं या फिर इनर पावर को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चैलेंजेस। चैलेंजेस जितने बड़े हैं, समस्याएं जितना बड़ा है, तनाव भी इतना ज्यादा हो जाता है। और दूसरा मेथड है, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाता है तो स्ट्रेस कम कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, चैलेंजेस को कम करने से तनाव कम हो सकता है या फिर आंतरिक शक्ति को बढ़ाने से तनाव कम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस को कम करना ये राइट मेथड है। चैलेंजेस को कम करना ये राइट मेथड है? नहीं, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं उतना तरक्की होता है। तो इसके कारण से उस अनुसार स्किल्स को डेवलप करना होता है, इसके अनुसार फिर प्रिपरेशंस करना होता है। तो इन 2 तरीके से हम कुछ हद तक तनाव मिटा सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन ऑब्वियसली और पॉजिटिव थिंकिंग है। 8 इल्यूजन्स के बारे में भी पता है सभी को कि 8 इल्यूजन्स क्या है। और अक्सर करके जो मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं तनाव के बारे में, दूसरे व्यक्ति के कारण से मुझे टेंशन हो रहा है या इस परिस्थिति के कारण से ये टेंशन हो रहा है, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता है कि हम हमारे खुद के सोच के कारण से वो तनाव होता है। खुद के सोच को हम बदलते हैं उस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। और दूसरे भी जो इल्यूजन्स है, तनाव के बहुत सारे कॉजेस है। वर्क प्लेस में या घर में कोई अलग अलग परिस्थितियां होती है तो उस कारण से तनाव होता है। और तनाव के अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं, इमोशनल बिहेवियर, माइंड और बॉडी का अलग अलग सिम्टम्स और साइंस भी, मेंटल साइंस भी है। टाइटनेस, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, एंगर है, टायर्डनेस और एंग्जाइटी भी है। फिजिकल साइंस सभी को पता है ही, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, इंसोमनिया, डायरिया, स्वेटिंग, ये सब। बिहेवियर में भी बहुत सारे ऐसे स्पीच इनकोहरेंस हो जाता है या फिर ऐसे हकलाना हो जाता है या फिर ड्रग स्मोकिंग, इन सभी इसमें आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। ऐसे तो कहते हैं तनाव नेगेटिव है, स्ट्रेस इज समथिंग नेगेटिव, लेकिन हम कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में भी हम देख सकते हैं इस ग्राफ में। एक्स एक्सिस में स्ट्रेस लेवल है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेस एक्स एक्सिस में स्ट्रेस लेवल है, वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस है। स्ट्रेस जितना जैसे बढ़ता जाता है परफॉर्मेंस इनिशियल लेवल में बढ़ता जा रहा है, लेकिन थर्ड जो टू मच स्ट्रेस या ओवरलोड में हम देख रहे हैं वो हमारा परफॉर्मेंस लेवल कम हो रहा है। अगर हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है इसको हम कह सकते हैं यू स्ट्रेस, यूजफुल स्ट्रेस या मोटिवेशन हम कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज समथिंग वेरी नेगेटिव। मोटिवेशन हम शब्द यूज करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। मोटिवेशन अगर है तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो हमारा परफॉर्मेंस भी कम होता जाता है लास्ट लेवल में। बहुत इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर में जो लगा मुझे वो ये बातें हैं, टाइम स्ट्रेस, एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, सिचुएशनल स्ट्रेस एंड एनकाउंटर स्ट्रेस। ये दिस इज समथिंग वेरी न्यू जो हम ज्यादातर करके हम नहीं जानते थे। टाइम स्ट्रेस के बारे में अगर बताया जाए तो क्या कह सकते हैं, व्हाट इज टाइम स्ट्रेस? हाँ, जो टाइम बाउंड होता है कि हाँ इस समय में हमें ये काम पूरा हो जाना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए, जो टाइम बाउंड जो बातें हैं वो टाइम के कारण से हमारे ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, दैट इज नोन एज टाइम स्ट्रेस। टाइम स्ट्रेस वरी अबाउट टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी डन बिफोर। अगर ट्रेन पकड़ने जाना है तो वो उस टाइम के अंदर हम वहां पहुंचना है, या फिर दो दिन में ये काम पूरा हो जाना है तो उसके बारे में टेंशन हो जाता है। फियर फॉर फेल टू अचीव समथिंग इम्पॉर्टेंट, अगर मैं उस पहुंच नहीं पाऊंगा या फिर कर नहीं पाऊंगा, उस प्रकार से डर रहता है, उसको मैनेज करने के लिए हमें प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। क्या इम्पॉर्टेंट है उसको हमें पहले करना है, और प्रायोरिटीज दे करके हम कार्य करते हैं तो टाइम स्ट्रेस जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, इट डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंस कंसर्निंग द फ्यूचर, दैट इज इट इज द फ्यूचर बेस्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे कुछ करना है लेकिन मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे क्लास लेना है, भाषण करना है, लेकिन मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तनाव हो जाता है, तो ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेस है। मैनेजिंग हाउ कैन वी मैनेज एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, बाय विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हम करें, जो भी मैं करने जा रही हूं अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचे उसके बारे में, विजुअलाइजेशन भी पॉजिटिव करें, तो फिर कुछ हद तक ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेस कम हो सकता है, और एक्स्ट्रा टाइम लेकर के हम उसके लिए प्रैक्टिस भी करें। तीसरे प्रकार का स्ट्रेस है सिचुएशनल स्ट्रेस, परिस्थिति के संबंधित जो अलग अलग प्रकार से हमें इतना अचानक जो परिस्थितियां आ जाती है, हमारे ड्राइव कर रहे हैं अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जो बिना बोले कुछ परिस्थितियां ऐसे अचानक घट जाती है जिंदगी में, वो सिचुएशनल स्ट्रेसेस है। आराम से सुबह से खुशी से जा रहे हैं, खुशी से सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई आकर के कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, मतलब अचानक जो परिस्थितियां हमारे सामने जिंदगी में आती है तो वो है सिचुएशनल स्ट्रेस, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है परिस्थिति, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को एक बहुत सुंदर तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। बाबा हमेशा कहते हैं सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी स्थिति का जितना हम ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना हमारे अंदर डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट आने के कारण से हमारे मन की क्लैरिटी, जो सोचने का जो तरीका है उसमें क्लैरिटी आने के कारण से अचानक कोई भी घटनाएं आती है, काम माइंड में होकर के हम उन परिस्थितियों को सुलझा सकते हैं। अचानक हम टेंशन में नहीं आएंगे या एंग्जाइटी में नहीं आएंगे या फिर अग्रेसिव वो मूड में नहीं आते हैं। और चौथे प्रकार का स्ट्रेस है एनकाउंटर स्ट्रेस, इट इज ड्यू टू वरी अबाउट इंटरेक्टिंग विद सर्टेन पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर मुझे पता है ये व्यक्ति है ना, थोड़ा सा arrogant है, थोड़ा सा उनके साथ व्यवहार करना थोड़ा मुश्किल है, या मेरा रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ मेरा ठीक नहीं है, तो जब मुझे उस व्यक्ति से मिलने जाना होगा तो थोड़ा सा टेंशन होगा कि पता नहीं वो व्यक्ति क्या क्या बोल पड़ेगा या फिर कैसा व्यवहार होगा उसका, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, नए नए हम भाषण करने के लिए कोई ऑफिस में जा रहे कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है वो उनका रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा। तो लोगों के साथ जब हमें काम करना है या व्यवहार में आना है तो एनकाउंटर हम मिलते हैं झूलते हैं तो वहां से रिस्पॉन्स कैसा आएगा हमें वो पता नहीं होगा, उसके कारण से वो टेंशन हो जाता है और कई बार कॉन्टैक्ट ओवरलोड भी होता है। इसके बारे में किसी ने समझा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हम व्यवहार में आते 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 उस व्यक्ति से हम तंग हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, लगता है कि चलो हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर के कहीं और जाके, क्योंकि ऑफिस में हम हर रोज जाकर के 8 घंटा काम कर रहे हैं, वही चेहरे, वही व्यवहार, वही बातें, वही सब कुछ हम लंबे समय तक करते हैं, तो फिर कुछ महीनों के बाद लगता है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, एटलीस्ट जाकर के दूसरे चेहरे तो देखे, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करे। तो ये ओवरलोड या कॉन्टैक्ट ओवरलोड, उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार करते करते ये कॉन्टैक्ट ओवरलोड हो जाता है, तो थोड़ा डिफरेंट चाहता है मन, तो वो भी एक प्रकार से स्ट्रेस है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमको चाहिए होगा इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल स्टेबिलिटी। कहीं बार हमें ब्रेक मिल सकता है, कहीं बार हमें ब्रेक नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि लीव की कमी होगी या फिर ऐसे परिस्थितियां होगी जो हम जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते या उन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो उस समय हमें इमोशनल स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी। हाँ, ब्रेक ले तो बहुत अच्छा है, अगर किसी भी कारण से ब्रेक नहीं ले पाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, अपने मन को समझाना होगा, रिफ्लेक्शन करके अपने मन को समझाना होगा। और दूसरी बात यह है, उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा रिलेशनशिप अच्छा करना होगा, और ये भी समझ हमारे बीच में आएगी, क्योंकि बाबा ने हमें सभी को ज्ञान दिया हुआ है कर्मों की गुह्य गति। हम उन पर्टिकुलर लोगों के साथ क्यों हैं वो हमें पता है, अगर कोई तंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई उनके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन उनका ही चेहरा मुझे रोज रोज देखना पड़ रहा है या उनके साथ व्यवहार में आना पड़ रहा है बार बार, वो क्यों है हमें पता है, हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब है, और कुछ भी करे हम कर्मों से छूट नहीं सकते, कहीं भी ब्रेक लेकर के जाए लेकिन वापस तो वहीं आना है ना, उसी जगह पे आना है, उन्हीं लोगों के बीच में आना है। तो जब हमें पता है वापस वहीं आना है तो क्यों ना हम उन लोगों के साथ हमारा संबंध ठीक करें। कई बार ये भी होता है कि हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आगे से जो व्यवहार आता है ना, व्यवहार करते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या जवाब है हमारे पास, भले इस जन्म में हमने कुछ गलत नहीं किया उस व्यक्ति के साथ, लेकिन पिछले जन्मों में कभी ना कभी हमने व्यवहार किया है ना ऐसे, भले उस व्यक्ति के साथ नहीं किया, कहीं ना कहीं किसी के साथ किया होगा, तब आज आकर के वही व्यवहार मेरे सामने मेरे पास आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने बिगर, इसको जब तक हम चुप्तु नहीं करेंगे तब तक हम परमधाम जा नहीं सकता। अगर कभी भी पलायन करके भी जाए, ये जगह अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, मैं इनके साथ मैं कोप अप नहीं कर सकती हूं करके मैं जगह भी चेंज कर लूं, तो वही प्रकार, उसी प्रकार के परिस्थितियां, वही संस्कार वाले लोग फिर से वही जगह मिलेंगे, दूसरी जगह पे मिलेंगे, क्योंकि मेरा कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए पलायन करने के बजाय, दूसरी जगह चेंज करने के बजाय हमें क्या करना होगा, हिसाब किताब चुकतु करना होगा। और हिसाब किताब कैसे चुकतु करें, बहुत सुंदर विधि है। थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कर्मों को हम कैसे चुकतु करें। वैसे तो बाबा ने बोला हुआ शुभ भावना शुभकामनाएं रखनी है और हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखना है और अच्छा सोचना है, वो तो है ही है। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत मदद करता है, बाबा की मदद बहुत मिलता है। लेकिन कुछ और भी टेक्निक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम देखते हैं बाद में। और फिफ्थ प्रकार का है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जहां कार्य करते हैं, जॉब जहां करते हैं वहां भी बहुत प्रकार के तनाव होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक स्ट्रेस मतलब मन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, परिस्थितियां कुछ नहीं है, हमारा संबंध ठीक है हर एक के साथ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में कुछ प्रकार से तनाव है, डिप्रेशन है या फिर एंग्जाइटी है। आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। संबंध ठीक है हर एक के साथ, जॉब भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ अंदर से डर है या एंग्जाइटी है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन से, मनगणित जो कहते हैं ना, मन से क्रिएट, अपने ही मन का क्रिएशन है ये तनाव, तो उसको हमें निकालना होगा वो पॉजिटिव थिंकिंग करके और बाबा की मदद से वो हो सकता है। क्योंकि कहीं ऐसे कंडीशंस हम देखते हैं अक्सर करके, ये आईटी फील्ड में जो कार्यरत है लोग, उनके अंदर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज और ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। भले वो उनका उनकी आमदनी बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो तनाव इतना ज्यादा है जॉब का, वो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है और डिप्रेशन कहीं ना कहीं आ जाने के कारण से सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाता है। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें और मेडिटेशन, इन सभी तरीकों से हम उस स्ट्रेस को हम निकाल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू कॉन्कर स्ट्रेस, ये बहुत लंबा लिस्ट है, आप किताब में देख सकते हैं और वैसे तो सभी को पता है ही। ये स्ट्रेस मैनेजिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, बिना कारण जो छोटी छोटी बातों के लिए हम तनाव लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग अक्सर करके दादी जानकी कहते हैं, बहुत सोचते हैं हम। सोचना थोड़ा कम करें और करना ज्यादा करें। जितना ज्यादा हम करते हैं कम सोचे, क्योंकि आजकल टेंडेंसी हो गया है ज्यादा सोचने की, बिना मतलब छोटी सी बात है लेकिन सोचते बहुत ज्यादा है, तो छोटी छोटी बातों में वो तनाव आ जाता है। तो अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, इग्नोर इट और जस्ट जैसे डिटैच हो जाते हैं वो होना जरूरी है। और अल्टर द सिचुएशंस या परिस्थितियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं तो करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चौथे नंबर का ये है, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। ये करना बहुत जरूरी है। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं या जो लोग हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन लोगों को वो जो है जैसे है उनको वैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये मजबूरी से करें या खुशी खुशी से करें? मजबूरी से करें या खुशी खुशी से करें? मजबूरी से जब हम करते हैं ना कहीं मन में रह जाता है, इसके अंदर है ना ये कमी ना होता तो अच्छा था, इसके अंदर ना ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाती तो अच्छा था, ये ना ये आलसी नहीं होती तो अच्छा होता, ये ना मतलब हमेशा कहीं ना कहीं कमियों को देखने की जो आदत है ना वो बना रहता है। और कमी होने के देखने की आदत रहने के कारण से कभी हम खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं खुश रह सकते। तो इसीलिए एक है, हम अपने आप को मैं जो हूं जैसी हूं उसको वैसा एक्सेप्ट करना। आप खुद को खुद के बारे में सोचिए, आप जो है जैसे हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं? यस सिंपल एक्सरसाइज है, जब भी आप अपने मिरर में देखते हैं अपने चेहरे को, आप अपने आप को देख करके आपको खुशी महसूस होती है या फिर आप अवॉइड करते हैं मिरर को देखना? दर्पण में अपने आप को देखना अवॉइड करते हैं कई लोग. यस, कौन कौन है जो अवॉइड करते हैं मिरर में अपने आप को देखना? मैं अवॉइड करती थी पहले, मैं खुद एग्जाम्पल हूं. क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अच्छी नहीं हूं, या कहीं ना कहीं लगता वो फीचर्स या फिर ब्यूटी की बात नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक्सेप्टेबल नहीं था मैं अपना. इस मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, इसको भरना चाहिए, उसको भरना चाहिए. तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जब रिजेक्ट करते हैं ना, कंप्लीट एक्सेप्टेंस जब नहीं होता है, तब हम अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहली बात है, हमें अपने आप को 100% एक्सेप्ट करना सीखना होगा. क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया है ना, इससे बड़ी बात कौन क्या है. भगवान ने, शिव बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया है, तो हम कौन होते हैं हम अपने आप को रिजेक्ट करना करने वाले. तो ये नशा रहे कि भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया है. ठीक है, कमी है, ऐसे नहीं है कि हम सब परफेक्ट है. ठीक है, कमी है, लेकिन पहले एक्सेप्ट करें तभी तो कमी कमजोरियों को हम निकाल सकते हैं. रिजेक्ट करना करते हैं तो हम कमी कमजोरियों को नहीं निकाल सकते हैं. जैसे अगर मुझे घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द है तो क्या होगा कि मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट करके पुल करके मैं सोचने लगूंगी घुटनों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, दर्द हो रहा है, दर्द दर्द के बारे में सोचती रहूंगी और मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट करती हूं. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट जब करती हूं तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है और जिस कारण से वहां हीलिंग नहीं हो पाता है. और हीलिंग के लिए ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा चाहिए. और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, पुल कर रही हूं मसल्स को, जिस कारण से वहां फ्लो नहीं हो रहा है. लेकिन मैं ये सोचूं ठीक है मुझे दर्द हो रहा, एक्सेप्ट कर लिया घुटनों में दर्द है. मैंने जब एक्सेप्ट का एक्सेप्टेंस का संकल्प सोच लिया, संकल्प क्रिएट कर लिया, तो मसल्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. जब रिलैक्स हो जाएगा तो फिर मैं बाबा से शक्ति लेकर, भले मेडिसिन जो भी लेना है तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बाबा की शक्ति को लेकर के उस जगह पे मैं दे रही हूं और हील कर रही हूं. तो हीलिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस. संस्कारों को परिवर्तन भी करना है तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस. हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, ये नेगेटिविटी है, एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसको निकाल सकते हैं. मैंने रिजेक्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं उसको परिवर्तन भी तो नहीं कर सकती. तो इसीलिए एक है खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरी बात है मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करना. ये प्रश्न नहीं उठाना मैं इनके घर में क्यों पैदा हुई, मेरे माँ बाप ये क्यों है वो क्यों नहीं है, मेरे बहन भाई बहन ये क्यों है वो क्यों नहीं है, मैं इस शहर में क्यों जन्मी हूं वहां क्यों नहीं. तो भले हमको कर्मों की गुह गति पता है, क्यों वहां जन्मे हैं, क्यों ये लोग हैं, सब कुछ है, वो पता है. पता होते हुए भी ये रिजेक्शन है कहीं ना कहीं मन से, जिस कारण से वो जो एनर्जी फ्लो होना चाहिए हर संबंधों में वो एनर्जी फ्लो नहीं होता है ना. तो इसीलिए वो बहुत ही सूक्ष्म बात है. किसको देख करके मेरा फीलिंग ये तो अच्छा नहीं है, फीलिंग जैसे चेहरा चेंज हो जाता है ना, वो भी एक प्रकार से रिजेक्ट कर रही हूं मैं मन से कि अच्छे नहीं है इनके साथ. भले मैं ऊपर ऊपर सुपरफिशियली मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूं, लेकिन मन से रिजेक्शन है ये ना, ये ठीक नहीं है, तो भी वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे से फ्लो नहीं होता. तो दूसरी बात ये है. और तीसरी बात ये है परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना. जो भी परिस्थितियां हैं मेरे जिंदगी में उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना. एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ी एनर्जी शक्ति मिलती है एक्सेप्टेंस से. ओके, और मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, बस सिर्फ काम 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 ना करें, थोड़ा रिलैक्सेशन और थोड़ा सा इसके लिए भी हम टाइम निकालें और अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। और अलग अलग प्रकार से योगा है या थाई ची है या फिर लाफिंग थेरेपी है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, या मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए। और नेक्स्ट जो ये है एंगर फ्री लिविंग, तनाव का ही एक अंश हम कह सकते हैं गुस्सा, है ना। गुस्सा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगर? एंगर इज अ पावरफुल इमोशन, वो एक इमोशन है दैट पीपल फील फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन समवन और समथिंग फ्रस्ट्रेट्स और अनॉयज देम। एक फ्रस्ट्रेशन सा है, अनॉय या फिर इरिटेबिलिटी है या डिसप्लेजर, ये स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है गुस्सा। और थॉट्स आर द सोर्स ऑफ एंगर एंड स्ट्रेस, हम सभी को पता है थॉट्स आर द सीड्स ऑफ एक्शन, तो हमारे संकल्प से वो उत्पन्न होता है। एंगर इन एक्शन, अलग अलग लोग अलग अलग रीति से वो गुस्से को प्रकट करते हैं। कुछ लोग जलसी ईर्ष्या से वो गुस्सा प्रकट करते हैं, रिटालिएट करते हैं, या फिर कोल्ड शोल्डर्स मतलब उनको इग्नोर करते हैं या उनके साथ बातें करना छोड़ देते हैं, वो भी एक प्रकार का गुस्सा है। या फिर कोई इगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत ही अहम उनके अंदर आ जाते हैं या फ्यूरियस हो जाते हैं, या फिर फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, ये भी एक प्रकार का गुस्सा है। वैसे तो कहते हैं बहनों में जलसी ज्यादा है और भाइयों में गुस्सा ज्यादा है, लेकिन आत्मा में तो दोनों संस्कार है। आत्मा अभी 84 जन्म पूरा करके लास्ट तक है, तो फिर सभी विकार अपने चरम सीमा में है। हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते भाइयों में जलसी नहीं होगा, होगा तो जरूर ना, उसमें भी देखा है कई बार। और ये नहीं कह सकते हैं कि बहनों में ईगो या गुस्सा या ईगो नहीं होगा, उनमें भी हो सकता है। मतलब आत्मा अलग अलग पार्ट बजाई हुई है, स्त्री का चोला भी लिया है, पुरुष का भी चोला लिया है, भले इस जन्म में स्त्री का चोला है लेकिन संस्कार तो स्त्री पुरुष का दोनों का है, और 84 जन्म के अंत में होने के कारण से सब विकार आत्मा में होगा ही। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि स्त्री के विकार अलग है, पुरुष के विकार अलग है, ऐसे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। और गुस्सा जब ज्यादा हो जाता है तो स्टैमर करना शुरू करते हैं, या इंडाइजेशन है, या चेस्ट पेन, मेंटल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी है, टेंशन है। और मेजर सोर्स ऑफ एंगर, जो एंगर का बहुत बड़ा कारण है, वो काम विकार है। काम विकार पूरा ना होने के कारण से वो गुस्सा पैदा हो जाता है, और अलग अलग प्रकार से वो गुस्सा ग्रॉस फॉर्म भी है, बहुत सुपरफिशियल फॉर्म भी है, और सटल फॉर्म भी है। सटल फॉर्म बहुत सूक्ष्म में भी वो गुस्सा अलग अलग रीति से हम व्यक्त करते हैं, कि या फिर हम बात करना छोड़ देते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर लगता है रिसेंटमेंट आ जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं, या फिर दूर हो जाना चाहिए, या फिर डिटैच हो जाते हैं। ये सभी सूक्ष्म रूप से गुस्सा आता है। और एंगर एंड इट्स मेनी रिलेटिव्स, गुस्से का बहुत बड़ा वृक्ष है। जलसी, ईगो, एंगर, एनवी, ये सभी गुस्से का ही अंश है। अगर कुछ भी ये इन सभी विकारों में या कमी कमजोरियों में कहीं भी कोई भी अंश हमारे अपने अंदर दिखाई देता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्रोध का अंश हमारे अंदर है। और इस चैप्टर में बहुत सुंदर लिखा है कि 8 ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एंगर, गुस्से का 8 पोते हैं, 8 पोते हैं और 8 पर पोते हैं। 8 पोते कौन है गुस्से के? हेट, एनिमोसिटी, रिवेंज, इंपल्सिवनेस, डिसलाइक, ऑपोजिशन, फोर्सफुल, फोर्स लगा करके भी कुछ कार्य करना, वो भी गुस्से का ही अंश है, फ्यूरियस हो जाना। और पर पोते कौन है? सल्किंग, मतलब उदास हो जाना, अंदर डिप्रेस्ड हो जाना, या स्टबननेस, बॉसिनेस, इरिटेशन, ग्रम्पी, हमेशा कर रहे, यो मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ग्रंप करते रहते हैं ना, तो वो भी गुस्से का अंश है, मूडी होना। कोई मूड खराब हो जाता है एक मिनट में मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है मूड्स, वो भी गुस्से का अंश है। अपसेट एंड डिसप्लीज्ड रूट कॉजेस भी हमने देखा। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू ओवरकम एंगर, एंगर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसमें मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं शेयर करना चाहती हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि वैसे तो कहते हैं थॉट्स आर द सीड्स ऑफ एक्शन, विचार से उत्पन्न होता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि फीलिंग्स पावरफुल है या थॉट्स पावरफुल है? थॉट्स पावरफुल है या फीलिंग्स पावरफुल है? जो कहते हैं थॉट्स पावरफुल है वो हाथ उठाइए। ओके, जो कहते हैं फीलिंग्स पावरफुल है वो हाथ उठाइए। 50-50% है। और जिन्होंने किसी में भी हाथ नहीं उठाया वो क्या कहते हैं? दोनों पावरफुल है या दोनों पावरफुल नहीं है? जब भी गुस्सा आता है, फीलिंग पहले आता है या थॉट पहले आता है? फीलिंग पहले आता है ना, वो उसने कुछ बोल दिया भप करके, वो आ गया गुस्सा ना, वो कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। गुस्सा जैसे आग की तरह वो भपक जाता है, वो आ जाता है, फिर आप बोल पड़ते हैं, बोल पड़ने के बाद फिर सोचने में आ रहा है मुझे बोलना नहीं चाहिए था, राइट? तो फीलिंग इतना पावरफुल है, और मैं कहती हूं थॉट्स की गति से भी ज्यादा स्पीड है फीलिंग्स की गति। फीलिंग्स का जो स्पीड है ना, थॉट्स की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, शुद्ध फीलिंग्स, शुभ भावना, शुभ कामना क्यों रखना है? क्योंकि फीलिंग्स को अगर चेंज कर लेते हैं ना, विचारों को चेंज करना इजी है, और कई बार ये उल्टा भी होता है। फीलिंग्स को कई बार चेंज करने के लिए थॉट्स के ऊपर भी हमें काम करना होता है, लेकिन अगर हम ज्यादातर करके फीलिंग्स पर ध्यान देंगे, हर एक को देख करके मेरा फीलिंग्स अच्छा है हर एक के प्रति, रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और कोई किसी को भी देखा, मैंने, मेरा मूड चेंज हो रहा है, फीलिंग्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हूं, तो मेरा पास्ट जो है वो याद आ जाता है, ये व्यक्ति है ना ऐसा है, वो व्यक्ति है ना ऐसा है, तो पास्ट के कारण से मेरा फीलिंग्स उस व्यक्ति के प्रति मेरा बदल रहा है। अचानक मैं सोचूं कि नहीं, हर व्यक्ति के प्रति मुझे शुभ भावना रखना है, ऑटोमेटिकली फीलिंग्स के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो आप देखिए बहुत जल्दी हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसीलिए थॉट्स पर मेहनत करने के बजाय फीलिंग्स पर अगर मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन हम ला सकते हैं। और पावरफुल भी है फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे आपने हमने देखा ना कि उसकी गति ज्यादा है और पावरफुल है। तो जब भी हम योग में बैठते हैं, योग में केवल हम सोचते रहे, ज्ञान का प्रयोग करे कि मैं आत्मा हूं, शिव बाबा परमात्मा है, वो ज्योति बिंदु है, वो ज्यादा लंबे समय तक हम योग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब फीलिंग्स जुड़ जाता है कि बाबा मेरा पिता है, पिता होने के नाते वो उन्होंने क्या क्या किया हुआ है मेरे लिए, वो फीलिंग्स जुड़ने के कारण से हम लंबे समय तक योग कर सकते हैं, है ना? तो फीलिंग्स बहुत पावरफुल है। हर चीज में अगर हम फीलिंग्स लाते हैं तो हम परिवर्तन जल्दी कर सकते हैं। तो गुस्से को भी अगर हमें निकालना है तो फीलिंग्स को परिवर्तन करने की जरूरत है। जब हम फीलिंग्स को परिवर्तन करना शुरू करते हैं तो गुस्सा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और दूसरा बहुत पावरफुल टूल है, गुस्से को अगर निकालना है तो त्रिकालदर्शी बन करके हर परिस्थिति को देखना जरूरी है। नहीं तो, हाँ जी, शुभ भावना, गुड फीलिंग्स एंड प्योर गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो गुड विशेस एंड प्योर गुड विश, ये इस व्यक्ति का उद्धार हो जाए, गुड फीलिंग्स है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा लगभग थोड़ा सा सिमिलर है। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना आत्मिक भावना से, ये आत्मा ओरिजिनली कौन सी है, आत्मा ओरिजिनली तो प्योर है, आत्मा ओरिजिनली तो पॉजिटिव है, अच्छी है, तो वो अगर हम रखते हैं हर व्यक्ति के प्रति तो वो हम कर सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनकर के जब हम सोचना शुरू करते हैं तो गुस्से को बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हर उसके व्यवहार को देख करके, उसकी देख करके बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। नहीं तो फिर हम त्रिकाल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हैं तो गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि ये क्या है, लेकिन बाबा जब भी हमें देखता है तो वर्तमान को देखता है क्या हमारा? कितने इतने सालों से, 80 सालों से बाबा कह रहा है आत्मा अभिमानी बनो बच्चे, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, ये बनो वो बनो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। वर्तमान को देख करके बाबा को तो गुस्सा आ जाए, 80 सालों से मैं कह रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बाबा क्या कहता देखता है? भविष्य को देखता है, हर बच्चे के भविष्य को बाबा देखते हैं, इसीलिए उनको गुस्सा नहीं आता। तो वो भी हम भी अगर हर आत्मा के, भले बीकेस का तो हम भविष्य देख सकते हैं ना, बीकेस तो वो देवता बनने वाली आत्माएं या पूर्वज आत्माएं, तो उनके प्रति हमारी शुभ भावना शुभकामना ऑटोमेटिकली आ ही जाता है और गुस्सा ठंडा हो जाता है। और गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत विधि है, पॉजिटिव थिंकिंग करना या फिर कर्मों की गुह्य गति जैसे मैंने कहा, और रिलैक्सेशन और ये भी सेल्फ एनालिसिस। रोल ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन करने से कैसे हम गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? थॉट्स को हम मैनेज करें, हीलिंग ऑफ द माइंड, थॉट्स को मैनेज करने से माइंड हील हो सकता है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बाबा के साथ कनेक्शन, भगवान के साथ जब हमारे मन का कनेक्शन हो जाता वो शांति की शक्ति जितना हमारे आत्मा के अंदर बढ़ता जाता है गुस्सा कम होता जाएगा। बेसिक मेडिटेशन स्टेप्स दिखाया है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो कर्म योगा। बाबा कभी भी कर्म संन्यास की बातें नहीं करता, कर्म योग की बातें बाबा हमेशा करते हैं। कर्म को शुद्ध करना है, कर्म को शुद्ध करने की जरूरत क्यों है? कर्म को शुद्ध करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कर्म से ही हमने विकर्म किया है। जैसे जैसे हम कर्म को शुद्ध करते जाते, शुद्धिकरण करते जाते हैं, वो आत्मा शुद्धि आत्मा शुद्ध होता जाता है। तो वो आत्मा को शुद्ध करने का तरीका है कर्म योग। तो किस किस रीति से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं या कर्म योगा किसको कहते हैं? कर्म योगा मीन्स टू परफॉर्म एक्शन वाइल हैविंग अ मेंटल कनेक्शन विद द सुप्रीम बीइंग। कर्म योग माना केवल कर्म करना नहीं है, हाथ कारड़े और दिल यारड़े। भले हाथ काम कर रहा है लेकिन मन से दिल से बाबा की याद, भगवान की याद या फिर श्रेष्ठ चिंतन में हम लगे हुए हैं तो उसको हम कर्म योगा कहते हैं। कर्म योग फंक्शंस इन टू वेज, दो तरीके से वो कार्य करता है। कर्म योग करने से बस फिलिंग द सेल्फ विथ पावर, आत्मा को शक्ति से हम भरपूर जब करते हैं फिर हम अपने कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आत्मा को सर्वशक्तियों से भरपूर नहीं जब तक नहीं करते हैं तब तक हम कर्मों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा है परमात्मा से, एक है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सर्व गुणों से भरपूर होना, दूसरी बात है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके फिर सर्वशक्तियां सर्व गुण परमात्मा से लेना। इन दो तरीकों से हम संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। कार्मिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्मिक प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट इफ वन वॉन्ट टू कर्म, क्योंकि आजकल क्या है केवल वर्तमान को देखते हैं और आजकल की दुनिया में केवल पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं और कर्म पर कम फोकस करते हैं, जिस कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम जिंदगी में दिखाई देता है। अगर हमें बहुत सारे समस्याओं से छूटना है तो हमारे कर्म के बारे में या कार्मिक प्रोसेस के बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कर्म के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं तो वी कैन रिड्यूस द वेट ऑफ द पास्ट। हमें पता है हम ब्राह्मण जो भी बाबा के बच्चे हैं 84 जन्म लिए हैं और सबसे ज्यादा जन्म हमने लिया है इस संसार में। और जब जब सबसे ज्यादा जन्म लिया है तो सबसे ज्यादा कर्म का बोझ किसके ऊपर है? कर्म का बोझ भी हमारे ऊपर है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जन्म लिया है। कर्म का बोझ ज्यादा है तो ज्यादा सफरिंग भी हम करते, लेकिन बाबा वो सफरिंग करने नहीं देता क्योंकि बाबा की याद से कर्मों की शुद्धिकरण करते करते हम वो जो ये जो बोझ है उसको हम हल्का करते जाते। तो वो मेहनत नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखे तो सबसे ज्यादा कर्म बंधन ब्राह्मणों का है। और किसके साथ ज्यादा है? ब्राह्मणों के साथ ही ज्यादा हिसाब किताब है हमारा। बाहर दुनिया वालों के साथ ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, ब्राह्मणों के साथ ही हमारा हिसाब किताब ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ हमने इतना सारा जन्म लिया है ना। सत्युग और त्रेता में तो वही लोग थे। चलो सत्युग और त्रेता में ज्यादा विक्रम तो हुए नहीं, लेकिन द्वापर युग में भी उन्हीं के कनेक्शन में ज्यादा आते रहे, तो जिस कारण से उनके साथ ही हमारा हिसाब किताब ज्यादा है। और उसको चुकतु करने की विधि भी हमें पता है, बाबा ने ज्यादा दिया हुआ है वो विधि। तो कर्म के ऊपर ज्यादा हम फोकस करने से पास्ट की जो भी बातें हैं हम उसको निकाल सकते, उसको चुकतु कर सकते, क्योंकि हमें पता है यही एक लास्ट जन्म है, हमें उसको चुकतु करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम चुकतु नहीं करेंगे तब तक हम परमधाम नहीं जा सकते है ना। तो इसलिए चुकतु करना पड़ेगा, तो इसीलिए उस पर हमें फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। और कर्म के प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देने से वी कैन एलिमिनेट एनी टाइप ऑफ सफरिंग। जो भी सफरिंग है हमारे जिंदगी में, कोई भी दुख है, दर्द है, चाहे वो शारीरिक व्याधि है, चाहे वो संबंधों में है, चाहे वो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारी जिंदगी के जो भी दिशा है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। एंड स्टार्ट टू एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव रिटर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एफर्ट। जितना जितना हम ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति करते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, हमारे अनुभव बढ़ता जाएगा। अनुभव चेंज होने के कारण से, अनुभव बढ़ने के कारण से संस्कार परिवर्तन होता जाएगा। एंड अंडरस्टैंड ऑल द व्हाइज विच सराउंड द डेली लाइफ। कहीं भी कुछ प्रश्न होता है, ये क्यों हो रहा है, तो उस क्यों का उत्तर आपके पास है। मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का उत्तर आपके पास है? हर क्यों का उत्तर है आपके पास नहीं है? नहीं है? है? सिंपल है ना, बाबा ने बोला हुआ है क्यों हो रहा है। कर्मों की गुह्य गति है, कर्मों का हिसाब किताब है। हर क्यों का उत्तर होना चाहिए हमारे पास। वो फीलिंग, वो इंट्यूशन आ जाता है, इस व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब किताब क्यों है। क्योंकि अगर मेरा लाइन बहुत क्लियर है तो पता चल जाता है पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, क्या किया है मैं उस व्यक्ति के साथ या क्या व्यवहार किया है, तो वो क्लैरिटी आ जाती है। तो फिर ब्लेम हम खुद के ऊपर ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमेशा हम ब्लेम दूसरों पर डालते रहेंगे कि इसने ना ऐसा किया, इसके कारण से मेरी जिंदगी बदल गई, इसके कारण से मैं खराब हो गई, इसके कारण से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, इसके कारण से यह प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते आए हैं। ये राइट है? अपनी समस्याओं के लिए मैं दूसरों को ब्लेम करूं, ये राइट है? बचपन में ठीक है, कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती है कि ठीक है, अगर घर में दो लड़के हैं और एक लड़की है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, वो प्रेफरेंस देंगे दो लड़कों को पढ़ाई करने के लिए, दो एक लड़की जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर वो सोचती रही कि देखा मेरे पेरेंट्स के कारण से मैंने एजुकेशन नहीं किया, ये किया, वो किया, सारा ब्लेम कहां जाता है, फिर पेरेंट्स के ऊपर जाता है। तो अगर ब्लेम पेरेंट्स के ऊपर जाएगा तो सारी जिंदगी वो खोजती रहेगी अपने पेरेंट्स को। तो उसके बजाय क्या सोचना है, उसके बजाय क्या सोचना है, क्या सोचना है? हाँ, प्रैक्टिकल अगर प्रेजेंट वर्तमान को देखते हैं तो पेरेंट्स ब्लेम, पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनके भी कुछ ऐसे परिस्थितियां थी, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, राइट? तो किसी को तो सैक्रिफाइस करना था, तो इन्होंने सोचा बेटी को सैक्रिफाइस, मतलब बेटी सैक्रिफाइस करे पढ़ाई को। तो मतलब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, तो खुद को जब सैक्रिफाइस करना पड़ता है या कुछ छोड़ना पड़ता है तो फिर हमारा सारा जो फ्रस्ट्रेशन है दूसरों पर डालना शुरू करते हैं। हम पैदल जा रहे, कोई आकर के ठोक दिया, ठोक के फ्रैक्चर हो गया मेरा, मेरी टांग टूट गया, कुछ भी हो गया, तो मैं उसको खोजती रहूं जिंदगी भर, देखा उसके कारण से मेरा टांग गया, ये हो वो हुआ। तो लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, हा? मेरा ही कर्म का हिसाब है। तो इतने सारे लोग जा रहे थे, उनको जाकर के नहीं ठोका, मुझे क्यों ठोका? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना मेरा उस व्यक्ति के साथ, उस स्थान के साथ, उस व्यक्ति के साथ। तो जब मैं ज्ञानी बनकर हर परिस्थिति को देखती हूं तो वहां मुझे उत्तर मिलेगा, हर क्यों का उत्तर मिलेगा, क्यों ऐसा हुआ। जब उत्तर मिल जाता है तो मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाने के बाद फिर उस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं बाबा की शक्ति से। उसको मतलब पूरा बदल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट कुछ बेहतर तो कर सकते हैं, कुछ अच्छा तो कर सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर हम दूसरों को कोसते रहेंगे, इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। नहीं, हर परिस्थिति को जो भी अपने जिंदगी में होता है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना जरूरी है। कुछ भी होता है जिंदगी में, मेरे कारण से ही वो हुआ, इसलिए वो बहुत मशहूर वो ये कहा ये है ना, अगर मेरे भाग्य में नहीं है भगवान भी नहीं दे सकता, अगर मेरे भाग्य में है कोई भी रोक नहीं सकते, है ना। अगर मेरा भाग्य है तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, भाग्य नहीं है तो नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अपने कर्मों पर पूरा अटूट विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और पास जो कर्म है उसको परिवर्तन करने का बहुत इजी मेथड है। वैसे तो शुभ भावना शुभ कामना वो तो है ही है, देना ही है, लेकिन एक बहुत सुंदर विधि, इस किताब में तो जिक्र नहीं है उसके बारे में, लेकिन काफी दिनों से उसका अभ्यास मैं कर रही हूं। एक डॉक्टर हेवलिन करके हैं जो हवाई में रहते हैं और उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, होपोनो होपोनो कहते हैं इस विधि को, और ये एक्चुअली हिप्नोथेरेपिस्ट है डॉक्टर हेवलिन, और काफी उन्होंने कुछ समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाया है। एक बार उनको क्या किया, एक मेंटल हॉस्पिटल था, बहुत ही उसमें पेशेंट्स इतने क्रूरी थे, क्रिमिनल टेंडेंसी वाले इतने क्रूरी थे उस मेंटल हॉस्पिटल में, वहां कोई भी स्टाफ जाता तो हफ्ते में 6-5 दिन तो वो छुट्टी मारते, क्योंकि इतना डर लगता है उन लोग स्टाफ मेंबर्स को उस हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि कहीं ये पेशेंट्स में हमको मार ना दे, ये ना कर दे, क्योंकि बहुत ही क्रूरी पेशेंट्स है वहां, क्रूरल है, तो वो बहुत डर लगता था। तो हर कोई वहां जाता तो कोई ना कोई बहाना बना करके वो हॉस्पिटल छोड़ करके आ जाते थे। एक बार डॉक्टर हेवलिन को नॉमिनेट किया वहां जाकर के सुपरवाइजर के रूप में, वहां जाकर के काम करने के लिए। हर हफ्ता कुछ दिन वहां जाते थे कुछ घंटों के लिए और वहां वो करते थे। वो जाकर के वो क्या, हर एक पेशेंट को अलग अलग सेल में रखा करते थे, क्योंकि दो व्यक्ति को अगर एक सेल में रखते तो आपस में लड़ जाते थे या फिर खून कर देते या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, तो हर व्यक्ति को अलग अलग सेल में रखते थे। और उस हॉस्पिटल का वातावरण बहुत ही डल, बहुत ही क्रूरी, मतलब बहुत ही खतरनाक था। तो डॉक्टर हेवलिन गए और एक बार सभी से मिलके आए, मिलके आने के बाद वो कभी भी पेशेंट से मिलने नहीं गए, अपने चेंबर में बैठते थे, उन सभी के फाइल्स वो देखते थे और कुछ कुछ वो विचार करते थे या कुछ सोचते थे। और धीरे धीरे देखा गया, धीरे धीरे वो पेशेंट्स नॉर्मल होने लगे और केजेस खुलने लगे और आपस में अच्छा बोलना शुरू किया पेशेंट्स ने, और फुटबॉल खेलने के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे लोगों को, क्योंकि इतने क्रूरी थे वो सब पेशेंस। तो धीरे धीरे सब कुछ खोलने लगी और फुटबॉल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे 2 साल के अंदर मेजोरिटी 80% पेशेंट्स नॉर्मल होकर के वहां से रिहा हो गए, वहां से डिस्चार्ज हो गए। फिर पूछा गया कि आपने किया क्या, पेशेंट से तो ज्यादा मिलते नहीं थे आप, और जो भी यहां आते थे डॉक्टर्स वो छोड़ के भाग जाते थे, लेकिन आपने किया क्या जो इतना परिवर्तन किया पेशेंट्स को, और जो नहीं कर सकते, जो इम्पॉसिबल था वो ऐसे पॉसिबल कैसे किया आपने। तो उन्होंने बहुत सिंपल एक थियोरी उन्होंने बताई, जो भी मेरे जिंदगी में आता है, चाहे परिस्थिति के रूप में या व्यक्ति के रूप में, वो मेरे हिस्से का ही है। माना बाबा कहते हैं ना, हम सब पूर्वज हैं, तो हम सतो प्रधान होते हैं तो सारी दुनिया सतो प्रधान हो जाता है, हम तमो प्रधान होते हैं तो सारी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। तो अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं उसके लिए जवाबदार हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ही एक हिस्सा, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन ऐसा है तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो इतने सूक्ष्म लेवल में वो गए, और वो सोचते हॉस्पिटल में क्यों आया मैं, इन पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट में क्यों आया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ मेरा ही पार्ट है जो अनहील्ड है, या कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से एक्सटेंशन होकर के ये हुआ है। तो वो क्या कहते थे, केवल 2 या 4 शब्द कहते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 जो शब्द है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द इतना पावरफुल है, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो इन 4 शब्दों को आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो वो समस्या ऐसे सुलझ जाता है, ऐसे सॉल्व हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो माना वो क्या करते थे डॉक्टर, वो फाइल्स देख करके, उस पेशेंट का फोटो या पेशेंट का फाइल खोल करके, ये सिर्फ सोचते थे कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिस कारण से ये व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है, उसको मैं कहती हूं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो वो हील होता जाएगा, मेरे अंदर जो हील होता जाएगा वो एक्सटेंड होकर के उसका भी हीलिंग हो जाता है। और मतलब वो एक बहुत सुंदर किताब है, आप इंटरनेट में ढूंढ करके वो ले सकते हैं, जीरो लिमिट्स है। तो वो सारा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, कैसे कैसे किया, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी वो करते हैं, और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स केवल ही अफर्मेशन से वो सॉल्व करते हैं। तो वो जब नॉन बी के बाहर के लोग दूसरों को इतना मदद कर सकते हैं, तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम आत्माओं में कितनी सारी शक्ति है, आत्मा की भी शक्ति है, शिव बाबा की भी मदद है ना। तो ये 4 अफर्मेशन आप किसी को भी लागू करिए, कुछ भी, चाहे वो कहीं पेन है बॉडी में, क्या फिर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, इन 4 शब्दों को आप यूज करना शुरू कर दे, तो आप देखें कितना जल्दी आपकी समस्याएं, मतलब पास्ट की जो भी अकाउंट है ना, कार्मिक अकाउंट, वो क्लियर होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि द्वापर युग से हम सभी ने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, चाहे अलग अच्छे अच्छे पोस्ट में एक गलत डिसीजन भी हजारों की मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर राजा हूं कोई भी जन्म में, एक गलत डिसीजन हजारों का जान ले सकता है। तो ऐसे कहीं डिसीजन हमने लिया होगा जिस कारण से इतने लाखों आत्माओं के जो बद्दुआएं हैं हमको अभी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जब मैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा भी हम एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, फिर हम इमर्ज करें, या फिर बाबा के सामने ये इमर्ज करें, द्वापर युग से लेकर के अब तक जिन जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है, बाबा को साक्षी मान करके उन आत्माओं को इमर्ज, मुझे पता नहीं है मैंने किन किन को दुख दिया है, लेकिन वो दुख के वाइब्रेशंस यहां अभी अफेक्ट हो रहे हैं ना। तो जिन जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है उन सभी आत्माओं से मैं क्षमा मांगती हूं. सॉरी, प्लीज आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा मांगती हूं. कि वो जब क्षमा मांगते हैं तो आधा माफी तो मिल ही जाता है ना, आधा तो वो कम हो ही जाता है. माफी जब मांगना शुरू करते हैं, प्लीज सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो ये कहेंगे तो बहुत ही हल्कापन हम महसूस करते हैं. और दूसरी बात है कि जिन जिन को मैंने दुख दिया है, जिन जिन को मुझे दुख दिया है, मैंने दुख दिया है उनसे तो मैंने माफी मांग ली, मैंने भी तो उन्होंने तो मुझे दुख दिया है ना, वो दुख मैं होल्ड करती हूं. वो दुख होल्ड करने के कारण से कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर दुख के संस्कार है, भले इस जन्म के नहीं है लेकिन वो दुख है ना, पिछले जन्मों से मैंने होल्ड किया हुआ है संस्कारों में, जिस कारण से वो मुझे फ्री नहीं कर रहा है. उसको भी मैं क्या करूं फिर, उसको रिलीज करने के लिए मैं एक से तो माफी मांग ली और दूसरे को तो माफ कर दो, माफ कर दो. जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है द्वापर से लेकर अब तक, मैं सभी को माफ करती हूँ. मेरे अंदर कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं है उन आत्माओं के प्रति, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, किसी भी प्रकार से दुख दिया है, उन सभी आत्माओं को मैं माफ करती हूँ. जब ये सोचते तो और ही जैसे आत्मा फ्री हो जाती है, फ्री हो जाती है, तो आत्मा बहुत हल्की हो सकती है. ये प्रैक्टिस करके देखिए तो वो पास्ट के जो भी कार्मिक अकाउंट है बहुत इजीली, बहुत ही सहज रूप से हम उसको रिलीज कर सकते हैं या उससे हम फ्री हो सकते हैं. और दूसरी बात, बाबा के साथ का जो संबंध है, अनुभव है, उसके आधार से भी हम अपने संस्कारों को या दुखों को हम भूल सकते हैं या फिर उसको मिटा सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे से सर्व संबंधों को जो संबंधों से मुझे याद करो. संबंधों से बाबा को याद करना बहुत जरूरी है. संबंधों से बाबा को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि संबंधों के कारण से ही मुझे दुख मिला है कहीं ना कहीं द्वापर युग से लेकर. तो वो दुख मैंने जो होल्ड किया है ना, उसको रिलीज करने का बहुत सुंदर तरीका है बाबा उस पर्टिकुलर संबंध से, जिस पर्टिकुलर संबंध से मुझे दुख मिला है, उस संबंध से मैं जब याद करती हूँ वो सारी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो सारा रिलीज हो जाता है. तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से मुझे याद करो. फीलिंग्स बहुत पावरफुल है, तो उन भावनाओं, रिलेशनशिप तभी हो सकता है जब फीलिंग्स है. फीलिंग्स और रिलेशनशिप ये दोनों जुड़ा हुआ है. जहां संबंध है वहां फीलिंग्स है, जहां संबंध नहीं है वहां फीलिंग्स नहीं हो सकता. तो भावना अगर लानी है, फीलिंग्स लानी है, तो संबंधों से बाबा को याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और फिर हम कर्मातीत स्टेज का अनुभव कर सकते हैं. वी कैन बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. नेक्स्ट सेशन ये है, यूनिट है नर्चरिंग रिलेशनशिप्स. क्योंकि इंसान अकेला तो नहीं रह सकता है, संबंध तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन संबंध जब बंधन बन जाता है तो वहां दुख है. तो इसीलिए संबंध को ठीक करना बहुत जरूरी है. जैसे फोर पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस भी हम कहते हैं ना, फोर पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन कौन सा है? तन, मन, धन और जन. तन तंदुरुस्त होना जरूरी है, मन भी पावरफुल होना जरूरी है, धन की भी आवश्यकता है. धन के बिना भी हम सुखी नहीं हो सकते. लेकिन लास्ट जो पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जन का सुख. सत्ययुग में चारों प्रकार का सुख है, तन, मन, धन और जन का. लेकिन जो नेग्लेक्टेड पिलर है वो है जन. संबंध को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि करियर पर फोकस करते हैं, अपने प्रोफेशन पर ज्यादा फोकस होने के कारण से फिर हम संबंध को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. लेकिन उसी के कारण से हमें दुख ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है. तो इसलिए संबंध को हमें महत्व देना बहुत जरूरी है. और वही बहुत मुश्किल भी है क्योंकि मशीन्स के साथ काम करना बहुत ईजी है लेकिन इंसानों के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं उस अनुसार वो रिएक्शन नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। तो इसीलिए कुछ वैल्यूज को तो हमें अपनाना जरूरी है। और दूसरी बात है, हम अपने कंपनी को, हमें जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उनको भी चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा संघ वैसा रंग हम कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, तो संघ का महत्व बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुरली भी जब सुनते हो तो संगठन में आकर के सुनो, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को लगता है कि चलो ये भी इस रास्ते में है तो हम भी उसी रास्ते में चल रहे हैं, तो एक प्रकार से उमंग उत्साह और हिम्मत मिल जाता है। और हमेशा हम सुख देने का सोचे, दुख कभी नहीं दे, और हमेशा दूसरों को एनकरेज, आगे बढ़ाने का सोचते रहे, क्योंकि हम दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम भी नहीं आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते चलने का सोचना है, और आगे बढ़ाते चलने के लिए, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में कहा था, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर उसको देख करके मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है तो क्या होगा? आगे बढ़ रहा है वो व्यक्ति, वो उसको देख करके मुझे ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि वो जो चीज उसके पास है मेरे पास नहीं है, वो चीज मुझे चाहिए, तो इसलिए उसको देख करके मुझे ईर्ष्या होती है। अगर उसको, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है लेकिन उसको देख करके मैं एक्सेप्ट करूं उसको कि ठीक है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वो जब मैं एक्सेप्ट करूं तो इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। जैसे दादियों को देखते या बड़ों को देखते हैं, तो जिस बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बहुत अपने आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़े, उनको देख करके कभी ईर्ष्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुछ लोगों को देख करके ईर्ष्या नहीं होती, बहुत बड़े हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं, उनको देख करके ईर्ष्या क्यों नहीं होती? कुछ लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है, बराबर वालों के साथ, जो बड़े हैं उनके साथ नहीं होती है ईर्ष्या। उनको मैंने हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जिस कारण से वो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, कि उनको देख करके लगता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके उनको देख करके लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, उन्होंने क्या क्या मेहनत किया है वैसे भी मुझे मेहनत करना है, वो उस जगह पर पहुंचने के लिए क्या क्या किया है तो मुझे भी और उस रीति से मुझे करना है, वहां तक पहुंचना है, वो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को देख करके मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, रिजेक्शन है कहीं ना कहीं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, अभी आए हुए ये हो, और मतलब कहीं ना कहीं रिजेक्शन है, जिस कारण से वो ईर्ष्या है और नेगेटिव फीलिंग है। नेगेटिव फीलिंग जितना ज्यादा है वह ब्लॉकेजेस ज्यादा है, उसके बजाय मैं एक्सेप्ट कर लूं उनको, फिर मुझे प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, वो प्रेरणा मिल जाती है उन लोगों से। तो इसीलिए हर चीज को मुझे एक्सेप्ट करना सीखना होगा, या फिर लोगों को एक्सेप्ट। वो हमारा जजमेंट है, वो फिर हमारा जजमेंट है, हमें करना है कि नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को एक्सेप्ट करूं मैं, हमारा जजमेंट भी कहीं ना कहीं काम करता है ना, कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या मुझे उस रीति से पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, या उस तरीके को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। तो खुद का जजमेंट, हर एक के पास जजमेंट है, करना है कि नहीं करना है, तो खुद को चूज करना है। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम, इस दुनिया में इतने सारे प्रकार के लोग हैं तो हर एक का तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी ना, तो जो राइट है, जो मुझे राइट लगता है, तो उसको ही एक्सेप्ट करूंगी, वही प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। और हमेशा दूसरों में गुण देखने की आदत हम रखें, गुड क्वालिटीज, क्योंकि हमेशा जो लाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, जितना जितना हम गुड पॉजिटिव देखते जाएंगे हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ाते जाएंगे। एंड रिजॉइस इन द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, दूसरों की तरक्की में हमें खुश होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि और दूसरों से प्रेरणा लेते रहे, हर एक चीज से प्रेरणा लेते रहे। और बहुत सुंदर एक कहानी है, एक योद्धा है, अपने युद्ध हार करके आता है और एक गुफा में बैठता है, तो वहां एक स्पाइडर को देखता है। स्पाइडर अपने जाल को बिछाया हुआ है और ऊपर उठने की कोशिश कर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार गिर रहा है, बार बार चढ़ रहा है। तो फिर कुछ देर के बाद, फिर बहुत प्रयास के बाद वो फिर चढ़ाई कर ली उसने। तो फिर उसको देख करके इस योद्धा को बहुत प्रेरणा आई कि नहीं, मुझे भी ऐसा करना है, बार बार मुझे भी प्रयास करना चाहिए। फिर वो जाकर के फिर युद्ध लड़ा, फिर जीत पाए। मतलब एक छोटी छोटी प्रयासों से हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, प्रयास जारी रखना है और लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। खुद के मिस्टेक से भी मुझे सीखना है और दूसरों के मिस्टेक से भी हमें सीखना है। नेक्स्ट है मैनेजिंग थॉट्स एंड इमोशंस, उसके बारे में तो आप सभी को पता है, ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं कहूंगी। हम सभी को पता है कि थॉट्स और फीलिंग्स, ये सारा साइकिल क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, एक्शंस और हैबिट्स का। अलग अलग प्रकार के थॉट्स भी हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करने के प्रिंसिपल्स क्या है, बेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव, और बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे इस चैप्टर में लगा, तो वो फॉल्स प्राइड है। गलत तरीके से हम ईगो डेवलप करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से है या फिर स्किल्स को लेकर के हम गलत फॉल्स प्राइड, हम बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से जो भी हम अहंकार या फिर हम कहते हैं अभिमान ये करते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो इस कारण से हम नेगेटिव सोचना शुरू हो करते हैं। तो फॉल्स, क्योंकि योगियों में यह बहुत बड़ा एक पेपर है, ज्ञानी जो हो जाते हैं, या अगर हम चेक नहीं करते, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी चीजों से हम बहुत कंट्रोल कर लेते हैं या विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लास्ट जो हमेशा होता है वो सटल ईगो है, कहीं ना कहीं अभिमान है, कहीं ना कहीं अहंकार है। तो उस पर हमें विजय पाना बहुत जरूरी है। तो उस सूक्ष्म लेवल से वो चेक करके उस पर हमें विजय प्राप्त करना है। और इंडिकेशंस ऑफ फॉल्स प्राइड वो क्या है, दूसरों को हम ब्लेम करते जाते हैं कि मेरे कारण से नहीं ये काम खराब हुआ, इसके कारण से खराब हुआ है, ये हम करते कंपेयरिंग फेवरेबल, दूसरों के साथ हम फेवर कंपेयर भी करना शुरू करते हैं और छोटी छोटी बातों में इंटरफियर भी, छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये फॉल्स प्राइड के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, ये पीजी डिप्लोमा में भी है, ये इमोशनल मैच्योरिटी माना इमोशनल स्टेबिलिटी है। इमोशंस कितना, जितना स्टेबल होगा उतना वो योगी की निशानी माना जाता है। मैच्योरिटी इज द टर्म यूज्ड इन साइकोलॉजी टू इंडिकेट दैट अ पर्सन दैट रेस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंस और इवेंट्स इन द अप्रोप्रिएट मैनर, माना स्थित प्रज्ञा अवस्था जो बाबा कहते हैं, हमेशा कोई भी परिस्थिति आए स्थित प्रज्ञा अवस्था को हमें मेंटेन करना है। जैसे साइनोसोइडल वेव्स होता है कि वो अगर जीरो लेवल से ऊपर अगर प्लस फाइव में जा रहा है तो वो ऑब्वियसली माइनस फाइव में भी आएगा, अगर प्लस फिफ्टी में जा रहा है तो माइनस फिफ्टी में भी आएगा, क्योंकि जितना वो ऊपर जाएगा उतना वो नीचे भी आएगा। अगर छोटी छोटी परिस्थितियों में अगर मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ, छोटी छोटी परिस्थिति में बहुत खुश हो जाती हूँ, वो प्रॉब्लम क्या है, खुश तो रहना है, बाबा कहते हैं खुश तो रहना चाहिए, ये राइट है या रॉन्ग है? छोटी छोटी परिस्थितियों में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो वो राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्यों? बाबा कहते हैं खुश रहो, तो कुछ अचीवमेंट्स को देखते हुए हमें खुश नहीं रहना चाहिए, खुश नहीं रहना चाहिए, खुश रहना अलग है, एक्साइटेड होना अलग है, राइट? अगर छोटी छोटी बातों में अगर बहुत खुश हो जाती हूँ या बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, माना प्लस फाइव तक ठीक है लेकिन प्लस फिफ्टी तक मैं जा रही हूँ तो क्या होगा, तो माइनस फिफ्टी तक भी तो आऊंगी ना, फिर
छोटी कुछ ऐसे कुछ घटना घटी तो मैं पुस करके वो सारा जो सोडा वाटर हो गया फिर -50 तक चली गई, है ना। तो वो चेंजेस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे अंदर भावना है, एकदम फ्लैट फेस तो नहीं कर सकते, कोई भावना ही नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रही हूं, दुखी नहीं हो रही हूं, या फिर मतलब फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो भी तो रॉन्ग है, वो भी तो रॉन्ग है। अगर किसी कोई मर गया एक हो तो फिर मतलब फीलिंग तो आता है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो ब्लैंक फेस या न्यूट्रल जीरो में तो नहीं हो सकते, है ना। तो होना जिससे स्थित प्रज्ञ अवस्था माना क्या है, जीरो लेवल नहीं है लेकिन +5 -5 इतना तो फ्लक्चुएशन रहे, लेकिन +50 -50 इतना फ्लक्चुएशन जिंदगी में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत है ठीक है, किसी को खुशी के मौके में मैं खुश हो गई, दुख के मौके में थोड़ा सा उदास, मतलब ठीक है उतना तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मैच्योरिटी, हर परिस्थिति में शांत होकर के, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके हर परिस्थिति का समाधान, हर प्रॉब्लम्स का समाधान मैं कर सकती हूं। इमोशनल मैच्योरिटी, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी तब आ सकता है जब हम तीनों पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को देख करके क्लैरिटी से हम करते हैं। तो इमोशनल मैच्योरिटी को एडअप करने के लिए कुछ गुण है, क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियंस, माना हमारी बुद्धि बहुत क्लीन और मन क्लीन और बुद्धि क्लियर होना जरूरी है, तब जाकर के बाबा से वो कनेक्शन, बाबा से वो टचिंग्स हमें मिलती है, उस अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात है ह्यूमिलिटी, निर्माणता, निर्माण भाव होना बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी। और तीसरी बात है स्टेबिलिटी, स्थिरता, हर परिस्थिति में स्टेबिलिटी। और चौथी बात है डिग्निटी, रॉयल्टी, हर बात में हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, राजाई संस्कार, रॉयल्टी, डिग्निटी होनी चाहिए, वो संस्कार अभी ही हमें भरना है। और पांचवी बात है सेल्फ सफिशियंसी, मतलब भरपूरता, ऐसे नहीं कि मुझे शांति इससे चाहिए, सुख इससे चाहिए, इसने कुछ ऐसा बोल दिया तो मैं उदास हो गई, इसने ऐसा कुछ अच्छा बोल दिया तो मैं फूल गई, मतलब ऐसे नहीं है। दूसरों के कारण से मेरा मूड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, मैं स्वमान में स्थित हो रही हूं निरंतर, जिस कारण से मैं सेल्फ सफिशियंट हूं। तो स्वमान का अभ्यास हमें ज्यादा करना चाहिए जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर आता है, और डिटर्मिनेशन। और इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी के लिए ऑब्स्टेकल्स जो है, परिस्थितियां कुछ ऐसे हो जाती है घरों में या फिर समाज में, जब भी बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, बच्चियों को अलग रीति से, बेटों को अलग रीति से ट्रीट किया जाता है, तभी भी वहां फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। और घर में घरेलू झगड़े होते हैं तो उसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और बीमारी में भी हमारा इमोशनल मैच्योरिटी कम हो जाता है। और पेरेंट्स का असर बहुत ज्यादातर करके बच्चों पर ज्यादा होता है, पेरेंट्स को कुछ भी होता है या फिर डेथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसका असर बच्चों पर, या पेरेंट्स भी जब नेग्लेक्ट करते हैं बच्चों को तभी भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि बचपन से घर के वातावरण का प्रभाव ज्यादातर करके बच्चों पर पड़ता है। तो अक्सर अगर देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ही अग्रेसिव नेचर है या फिर क्रिमिनल नेचर है बचपन से ही, अक्सर करके देखा गया है कि उनके घर के प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस अगर है, या फिर माँ बाप के बीच में लड़ाई ज्यादा है, या फिर ऐसे परिस्थितियां पाई गई जिस कारण से बच्चों में बहुत वायलेंस, ज्यादा टेंडेंसीज बढ़ा हुआ है। एक बार अफ्रीका में नैरोबी में रिमांड होम विजिट करना हुआ, रिमांड होम इज चिल्ड्रंस जेल, बच्चों का जेल था। तो वो तीन सेक्शन था, एक क्रेडल में बहुत ही जैसे 6 माह के बच्चे वो क्रेडल में सोए हुए हैं, कुछ 8-10 बच्चे वो थे फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में पांच से आठ या दस साल के बच्चे थे जो छोटी मोटी चोरियां की थी, ऐसे वो काफी बच्चे थे, 50 के करीब थे। और तीसरे सेक्शन में टीनेजर्स थे, 10-12 साल से लेकर के 18-20 साल के बच्चे, वहां बच्चियां भी थी बच्चे भी थे। तो वो जो क्रेडल में थे बच्चे, 6 मास के बच्चे या 3 मास के बच्चे, 8 मास के बच्चे जो क्रेडल में थे, तो उनके बारे में पूछा कि वो यहां क्यों हैं बच्चे। तो उनको उनके बारे में कहा कि ये है ना इधर डस्टबिन में मिले हुए हैं या कूड़े के डब्बे ऐसे रस्ते में मिले हुए हैं बच्चे, तो उनको क्लेम करने वाले कोई नहीं है, तो उनको उठा करके यहां लेके आए। या फिर कुछ बच्चों को, बच्चों का केस इसमें चल रहा है अभी तक कोर्ट में, 2 माह कहती है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो उनका कोर्ट केस होने के कारण से वो बच्चा यहां है। तो ऐसे कुछ बच्चे वहां रिमांड होम में थे। और दूसरे सेक्शन में जो थे तो कुछ ना कुछ चोरियां की थी, या कार चोरी की थी, ये चोरी की थी, तो वो सब बच्चे बीच में थे। और टीनेज बच्चे जो थे, जो 12 साल से 18-20 साल के जो बच्चे थे, वहां बच्चियां भी थी, बच्चे तो थे, कुछ मर्डर किए थे, ये किए थे, तो ऑब्वियसली वहां अफ्रीका में इतना सारा मर्डर चलता है सब कुछ, लेकिन बच्चियां थी बहुत इनोसेंट थी। तो उनके बारे में पूछा ये क्या की, इन्होंने क्या किया जो यहां आए, तो उनके बारे में कहा कि ये है ना बेबी सिटिंग कर रही थी, मतलब वो नौकरी कर रही थी किसी के घर में, बेबी सिटिंग, बच्चे की देखभाल कर रही थी। उसको मालकिन के ऊपर बहुत गुस्सा आया, मालकिन के ऊपर गुस्सा आया तो उसने क्या किया, बच्चे की सिर मरोड़ करके उसने मार दी। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 महीने का बच्चा, उसको सर मरोड़ करके उसको मार देना, मतलब उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितना, भले कितना भी गुस्सा मालकिन के ऊपर आए, लेकिन बच्चे को देख करके किसी को भी लगता नहीं कि उसको मारना चाहिए, और ही बच्चे को देख करके प्यार की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, तो सिर्फ मरोड़ करके मार देना। और दूसरी बच्ची थी वो भी बेबी सिटिंग कर रही थी, और वो भी उसको भी फ्रस्ट्रेशन आया मालकिन के ऊपर, और उस बच्चे को रेफ्रिजरेटर में डाल करके मार दिया। तो माना कितना फ्रस्ट्रेशन, बिहेवियरल इम्बैलेंस है, डिसऑर्डर है उनके अंदर। तो क्यों डिसऑर्डर है, क्योंकि जब स्टडी किया गया तो उनके जो बैकग्राउंड है पेरेंट्स, आइदर वो सिंगल पेरेंटेड है, मां छोड़ के गई है या बाप छोड़ के गया है, या फिर अगर दोनों है तो आपस में बहुत लड़ाइयां झगड़ा चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा है, तो बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है, जिस कारण से समाज में जाकर के वो बच्चे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए वो रिमांड होम के जो भी स्टाफ थे उन्होंने इतना प्यार, वो लोग इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे उन बच्चों को, दे दे करके 3-4 साल में वो नॉर्मल हो जाते थे, फिर उनको बाहर भेजा जाता था। 3 साल मैक्सिमम उनको रख सकते हैं रिमांड होम में कोई भी बच्चे को, तो उनको बाहर भेजते थे, और बाहर जाने के बाद वो बहुत ही अच्छे नागरिक बनकर, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आर्मी ऑफिसर बना हुआ है, अच्छे पोस्ट में गए हैं, और साल में 1 मास वो रिमांड होम में आते हैं, सेवा करते हैं और जाते हैं। तो इतना एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था। बना वो कॉज क्या है, पर्सनैलिटी इम्बैलेंस क्यों आया है, क्योंकि प्यार की कमी है बच्चों को। तो इसीलिए इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल बैलेंस अगर लाना है तो हमारे अंदर वो फीलिंग, भले बचपन कैसा भी गुजरा हमारा, हम अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारा तो अपना वो मैच्योरिटी लाना है, तो भगवान से वो सर्व शक्तियां, सर्व प्यार, सर्व संबंधों का सुख जब हम अनुभव करते हैं तो इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आत्मा के अंदर आ सकती है, ठीक है। और इमोशनल इमैच्योरिटी के कुछ साइंस है, हम कहीं बार दुख नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं बार दुख उठा लेते हैं, इतना हम सेंसिटिव हो जाते हैं, किसने भी कुछ बोल दिया हम दुखी हो गए। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ना दुख देना ना दुख लेना। और कहीं बार हम दुख उठा लेते हैं, उठा लेने के बाद अंदर से कितनी बद्दुआ निकलती है, दुखी इतने हो गए हम बद्दुआ निकालते हैं और हम राजयोगी है, हम बद्दुआ निकालते हैं तो कितना पावरफुल होगा आपको पता है राइट बद्दुआ जब अगर निकालते हैं तो वो रिटर्न कब कैसे आएगा हमको? दुखी है तो बद्दुआ दे दी, लेकिन कभी ना कभी मुझे उसका असर अनुभव तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि मुझे ना बहुत शाप महसूस होता है या शापित हो गई हूं या फिर ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार में श्राप देने का संस्कार बन गया है हमारा। छोटी छोटी दुख, छोटी छोटी बातों में हमें दुख उठाया, दुख उठाने के कारण से ऐसे ऐसे कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। देखा उसने इतना दुख दिया है ना, देखना एक दिन दुखी होकर मरेगा। मना अंदर से भले हम ये नहीं करते लेकिन फिर वो इतना पावरफुल हो जाता है, ये भी हमें नहीं करना है। इतना मन स्ट्रांग हो, इतना पावरफुल हो, कैसा भी दुख मिले हमें दूसरों को बद्दुआ नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कभी ना कभी वो बद्दुआ लौटकर हमें ही वापस आएगा, आएगा जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं दुख उठाना भी नहीं, और कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और जलसी, ये भी मैनिपुलेशन। इसीलिए इमोशनल मैच्योरिटी के लिए टॉलरेंस, सहन शक्ति, सहनशीलता से, सहन की शक्ति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बहुत कई मुरलियों में बाबा ने कहा है अगर तेजी से आत्मा की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो सहन करने की शक्ति को बढ़ाओ। आप देखें सहन शक्ति को बढ़ाएंगे तो आत्मा की शक्ति बहुत जल्दी बढ़ती, क्योंकि सहन शक्ति बढ़ने के कारण से नेगेटिव हम नहीं सोचते, बद्दुआ नहीं देते, जिस कारण से आत्मा की शक्ति जल्दी बढ़ जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल टेम्परेचर भी हमारे अंदर होना चाहिए। और लास्ट यूनिट है इस किताब का रिसेंटमेंट मैनेजमेंट, वो लगभग एंगर मैनेजमेंट के नजदीक है। रिसेंटमेंट इज समवॉट सिमिलर टू एंगर। रिसेंटमेंट माना गुस्सा होकर के एक दूसरे से बातें नहीं करना, ये करना, तो वो अलग हो जाना। रिसेंटमेंट इज अ फीलिंग ऑफ एंगर अबाउट समथिंग दैट समवन हैज डन टू यू। किसी ने कुछ किया है, गलत व्यवहार किया या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाया है, तो जिस कारण से उन आत्माओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति हमारा गुस्सा अंदर ही अंदर रहता है। तो इसीलिए और रिसेंटमेंट से हमारा ही नुकसान होगा, गुस्से से हमारा ही नुकसान होता है, तो इसीलिए उसको निकालना जरूरी है। कॉमन अपीयरेंस ऑफ फैमिलीज में कई बार हम नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़ों से या सीनियर्स से, अपने बॉस से, स्कूल में, बिजनेस में, कहीं लोगों के साथ हमारी नाराजगी चलती है, जिस कारण से हम वो साइकिल, नाराजगी जताने से फिर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, रिलेशनशिप खराब होने के कारण से और फिर प्रॉब्लम्स ये हो जाता है। तो इसीलिए इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, जब दो लोग बात नहीं कर रहे होते हैं ना, बहुत नाराजगी है दोनों के बीच में, तो कहेंगे भाई आप जाकर के बात करो ना उनसे, मैं क्यों करूं, वो आकर के बात करे ना पहले, मैं क्यों जाऊं, ईगो, हाँ मैं क्यों झुकूं, वो झुके ना पहले। तो इसीलिए इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा झुकना शुरू कर, अगर झुक करके एक कदम रख लिया तो वो ऑटोमेटिकली बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बात करने के लिए तैयार नहीं, वो कौन आइस ब्रेक करेगा, कौन बात करेगा, पहला कदम कौन उठाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए बाबा कहते हैं ना ओंटे सो अर्जुन, तो अगर हम पहले झुकेंगे तो हमारा मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ह्यूमिलिटी और थोड़ा डिटैचमेंट भी जरूरत है। With a healthy attitude of detachment, don't deny that you feel offended. हाँ, अगर कुछ किसी ने कुछ बोला है, आपको खराब लगा है, तो एक्सप्रेस जरूर करना है कि आपने जो बोला है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, कम्युनिकेट करना अलग बात है, लेकिन उसी बात को लेकर के इतना लंबा सालों साल तक उसको चलाना, वो बुरी बात हो जाती है। और फिर वही बात को फिर नेगेटिव थिंकिंग में इतना बदल जाता है, सालों साल तक वो बर्डन, वो इतना भारीपन होता है, बार बार वही सोच, देखा उसने ऐसा किया, देखा उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जो भी आएंगे उसी का वर्णन करेंगे, जो भी ये करेंगे, मतलब इसी का चिंतन वर्णन सब कुछ होने के कारण से वो संस्कार में इतना ज्यादा हो जाते। तो इसलिए एक थोड़ा सा झुक करके बात कर लिया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, नहीं तो इतना फिर बर्डन उठा करके हम चल रहे हैं। तो इसीलिए हाउ नॉट टू टेक सोरो, सोरो इज एन इमोशनल पेन एंड इट ड्रैग्स यू डिप्रेशन, ड्रैग्स टू डिप्रेशन एंड नेगेटिव फीलिंग, टू अपलिफ्ट अगेन वी नीड टू मेडिटेट एंड टेक द डिवाइन पावर कंटिन्यूअसली। जब रिसेंटमेंट या फिर नाराजगी क्यों होता है पता है, नाराजगी क्यों होता है, क्योंकि हम दूसरों को सपोर्ट मान करके चलते हैं, भले हम सहयोग दे एक दूसरे को, लेकिन सपोर्ट कोई भी इंसान को नहीं बनाए, वो रहे तो मैं हूं, उसके अस्तित्व के कारण से मेरा अस्तित्व है, उसके कारण से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बाबा कहते हैं किसी को भी सपोर्ट नहीं बनाना है, आधार नहीं बनाना है, ठीक है सहयोग देना लेना जब तक है संसार वो तो सहयोग देना लेना तो रहेगा ही, लेकिन सपोर्ट जब बना लेते हैं वो बहुत ही नुकसानकारक है, तो तब ये सारे नेगेटिव सब कुछ चलता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट, एक भगवान को ही आधार बना करके हम चले, और दूसरी बात है सेल्फ एनालिसिस, बार 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 आत्मा में वो सेल्फ एनालिसिस और विल पावर को बढ़ाएं, और ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन जैसे हम हर रोज करते हैं वो रेगुलर रूप में हम करते जाएंगे तो आत्मा में वो शक्ति भरती जाएगी, और अंदर जो भी गुण और शक्तियां भरती जाएगी तो फिर नाराजगी या फिर नेगेटिव दूसरों से हम, क्योंकि सेल्फ सपोर्टिव है हम, तो जिस कारण से हमें कुछ लेने की भावना नहीं है, देने की भावना जब हो जाता है तो ये सभी नेगेटिविटी हमारे जिंदगी से दूर हो जाती है। ठीक है, ओम शांति।